मुख्य समाचारों में ग्रेटर सिडनी के निवासियों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, 27 नए कोविड-19 मामले, फेडरल सरकार के साथ बैठक के बाद ऑस्ट्रेलियन व्यवसाय द्वारा वैक्सीन रोल आउट का समर्थन और भारत के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का निधन। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। शहर के दक्षिण पश्चिम में कोविड-19 के प्रसार की चिंताओं के बीच सिडनी एक और सप्ताह के लिए बंद रहेगा। न्यू साउथ वेल ने रात भर में कोरोना वायरस के 27 नए मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल 13 उनकी संक्रामक अवधि के लिए अलगाव में थे। लॉकडाउन के विस्तार का अर्थ है कि सिडनी के छात्र घर से ही दूरस्थ शिक्षा द्वारा तीसरे सत्र की शुरुआत करेंगे। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ग्लैडिस बेरी जिक्लिन का कहना है कि कई नए मामले फेयरफील्ड, लिवरपूल और कैंटरबरी बैंक्सटाउन के स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में हैं।
And can I please say to the communities in those areas, many of them have a similar background to me, please don't mingle with family. I mean, I haven't seen my parents since the lockdown started. It's hard. But can I just say to everybody, please don't mingle with family. Don't think it's okay to go and visit your cousins. Don't think it's okay to have sleepovers. Please, in those three local government areas, limit your movement.
न्यू साउथ वेल्स की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चेंट का कहना है कि 37 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 7 मरीज ICU में हैं।
Now, this is in the context where New South Wales Health also provides excellent home assessment and care. So the fact that 37 patients have been admitted to hospital should indicate to the community the fact that COVID, including the Delta strain, is not a mild disease. It can be mild in some, but for many it can lead to hospitalization and death.
Australian व्यवसाय अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखेंगे। CEOs और उद्योग जगत के नेताओं ने देश के वैक्सीन रोल आउट का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलियन व्यवसायों के लिए अवसरों और बाधाओं पर चर्चा करने के लिए फेडरल सरकार के साथ मुलाकात की। ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि व्यापार ने परिवहन, रसद, सामुदायिक जुड़ाव और संचार के साथ सहायता की पेशकश की है।
For example, Alan Joyce, the CEO of Qantas, talked about how he has 13 million frequent flyers and over 22,000 workers. We heard from the Minerals Council how their businesses, their members, reach out into Indigenous communities in the remotest parts of Australia and how they're willing to work with us to get that message about how important it is to vaccinate.
श्री फ्राइडनबर्ग ने पुष्टि की है कि न्यू साउथ वेल्स के कोषाध्यक्ष ने उन्हें पत्र लिखकर जॉब कीपर भुगतान बहाल करने के लिए कहा है, लेकिन श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि जॉब कीपर को वापस नहीं लाया जाएगा क्योंकि इसे विशिष्ट लॉकडाउन भुगतान समर्थन द्वारा बदल दिया गया है। उधर शेडो ट्रेजरर जिम चालमर का कहना है कि नए भुगतान बहुत छोटे हैं और मानदंड बहुत ही संकीर्ण हैं।
This government is too quick to rule out support for affected areas and too slow to rule out the vaccine. If only Josh Frydenberg was as quick to introduce the vaccine around Australia as he was to rule out additional support for workers and small businesses doing it tough as a consequence of the Morrison government's incompetence.
मेलबर्न में कोरोना वायरस प्रतिबंधों में कल बृहस्पतिवार मध्य रात्रि से ढील दी जा रही है और ये विक्टोरिया के क्षेत्रीय क्षेत्रों के ही अनुरूप होगा। कार्यालयों में मास्क अनिवार्य नहीं होगा जब तक कि नौकरी के लिए सीधे ग्राहकों का सामना करने की आवश्यकता ना हो, हालांकि अन्य इंडोर सेटिंग्स में उनकी आवश्यकता होगी। स्थानों पर क्षमता प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे और 50 लोगों को डांस फ्लोर पर वापस जाने की अनुमति होगी। फुटी यानी AFL पर भीड़ 75% क्षमता तक बढ़ जाएगी। विक्टोरिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले ने हालांकि विक्टोरियन लोगों को याद दिलाया है कि कोविड-19 का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
I am sure that we will see more people as a result come back to our offices, which will in turn assist our retail, our hospitality, and our business districts continue their recovery. I think Victorians need look no further than the outbreaks across our borders to know and appreciate the risks that continue to attend coronavirus spreading through indoor domestic settings.
क्वींसलैंड में आज स्थानीय रूप से प्राप्त एक नया मामला है जिसे घरेलू संगरोध में पाया गया था। स्वास्थ्य अधिकारी पिछले संक्रमणों के मामले का पता लगाने में सक्षम थे जिसके लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग कहती हैं कि ये एक सुखद परिणाम है।
So excellent news today. So one new case, and that was picked up in someone who was in home quarantine for their entire infectious period. They're actually well, they're asymptomatic, and they've been in home quarantine. And they live in the same household as those two cases that I announced a couple of days ago from Tarragindi.
मेलबर्न की एक मां के 5 साल की बेटी को भारत से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए एक अभिभावक के साथ यात्रा छूट दी गई है। सौजन्या गुल्लापल्ली के पहले आवेदन खारिज कर दिए गए थे, पहला इसलिए कि इस स्वयंसेवक अभिभावक का एक ऑस्ट्रेलियन स्थायी निवासी होना न कि एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक, और दूसरा आवेदन इसलिए विफल हो गया क्योंकि अभिभावक एक पारिवारिक मित्र है ना कि परिवार का सदस्य। एडवोकेट नेहा संधू का कहना है कि इस बात को लेकर चिंता है कि यात्रा छूट कैसे तय की जा रही है और क्या कोई नई सख्त नीति लागू की जा रही है।
There should be a clarity whether a temporary resident with an exemption be able to travel on the Qantas flight. I know some of the family members like a wife of a citizen or a PR or children can travel. But the people who had got the exemption on other criteria for their job or like priority occupation list. So it should be clear like whether like this category is able to travel.
Videsh Mamlo aur Vyapar Vibhag ka kehna hai ki wo संवेदनशील ऑस्ट्रेलियन लोगों को घर वापस लाने के लिए परिवारों के साथ काम कर रहा है और प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार होता है। अमेरिकन पेंटागन ने अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को बगराम एयरफील्ड से अपनी वापसी का बचाव किया है। इस बेस पर लगभग 20 वर्षों के बाद अमरीकी सैनिकों ने बिजली बंद कर दी और बेस के नए अफगान कमांडर को सूचित किए बिना रात में ही वहाँ से निकल गए। अफगान अधिकारियों का कहना है कि अमरीकी सैनिकों के जाने के 2 घंटे से अधिक समय के बाद ही उनको इस बात का पता चला। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी।
What I can tell you is that there was coordination with Afghan leaders, both in the government as well as in the Afghan security forces, about the eventual turnover of Bagram Air Base. I can't speak for the level of information that went down the Afghan chain of command, but I can tell you that Afghan leaders, civilian and military, were appropriately coordinated with and briefed about the turnover of Bagram Air Base.
अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में तालिबान की जीत के कारण कुछ देश अपने वाणिज्य दूतावासों को बंद करने के लिए प्रेरित हुए हैं। लगभग 1,000 अफगान सैनिक तजाकिस्तान सीमा के पार भाग गए हैं। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आज स्थानीय समय अनुसार शाम को फेरबदल की जाएगी। एनडीटीवी के अनुसार श्री मोदी के नई कैबिनेट भारत के इतिहास में सबसे युवा होगी और शैक्षणिक योग्यता सबसे अधिक। इसमें औसत आयु सबसे कम होगी और PhD, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और उनके क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए छोटे समुदायों को तथा प्रशासनिक अनुभव रखने वालों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और भारत में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की अनेक दिग्गज हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। दिलीप कुमार ने 1944 में ज्वारभाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपने 5 दशक लंबे करियर में मुगले आजम, देवदास, नया दौर और राम और श्याम जैसी अनेक हिट फिल्में दीं। वो आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में दिखाई दिए थे। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 75 सेंट और भारत के 56 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में स्पेन पर पेनल्टी शूटआउट जीत 4-2 में 1-1 से बराबरी पर समाप्त होने के बाद इटली यूरो 2020 के फाइनल में पहुंच गया है। इटली की राजधानी रोम में जमा हुए प्रशंसक अंत तक इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
It was a very hard game until the end. When Morata failed to score his penalty, we could all finally breathe again.
कल गुरुवार यानी 8 जुलाई को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच सेमीफाइनल होगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। होबार्ट में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। कैनबरा में सुबह के समय धुंध, मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम -3 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। और ब्रिस्बेन में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।